ये पंखे की हवा नहीं आए, थोड़ा नजदीक। ओम शांति। बाबा है प्यारे, दिलों के सहारे, लेकिन ऐसे बाबा को भी कई बच्चे भूल जाते हैं और बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा को भी आश्चर्य लगता है। बाबा ने कहा, ऐसे बाप को भूल जाएंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे? तो बाबा ने कहा, देखो जानवर भी अपने बाप को नहीं भूलता है, तुम तो बाबा के लाडले बच्चे हो तो बाबा को क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात बाबा ने कही कि कई बच्चे कहते बाबा क्या करें, विकल्प आते हैं। बाबा ने कहा, डरो नहीं, घबराओ नहीं, विकल्पों से दूर होने का युक्ति बाबा ने बताई है कि आत्मा भाई भाई है, इस स्थिति का अभ्यास करना है। और साथ साथ बाबा ने फिर से याद कराया कि इस समय सारी सृष्टि पर राहु की दशा है, जब तुम सतयुग में हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तभी फिर बाबा ने एक बात कही कि आज की सारी दुनिया क्या हो गई है, जैसे एक निर्गुण संस्था है। बाबा ने कहा, वो तो एक छोटी सी निर्गुण संस्था है, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया जो है वो निर्गुण संस्था है, लेकिन बाबा आकर के कैसे गुणवान बनाते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरी मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने, ईश्वरी मत पर चलने से ही बाप से वर्षा मिलता है। फिर आज का प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीतने की युक्ति कौन सी बताई? बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीतने की युक्ति कौन सी बताई है? उसका उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्म समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए विकृति में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। कौन कौन सी बातें बाबा ने बताई, फिर से रिपीट करते हैं। पहला, बाबा ने कहा विकल्प जीत बनने के लिए क्या बोला, अपने को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। दूसरा, शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए बेकुटी में आत्मा भाई को देखो। तीसरा, अगर पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। कौन सी? भाई भाई की। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। पांचवी बात, निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, याद से ही कट निकलेगी। छठी बात, याद से ही कट निकलेगी। और सातवीं, खुशी का पारा चढ़ेगा। और आठवीं बात, और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव भगवान है तो जरूर कहते हैं शिव भगवान वांच है, तो जरूर शरीर होगा तब तो बाप वाच करेंगे, तब तो बाबा बात करेंगे, शरीर होगा तो देखेंगे बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं शिव भगवान वांच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वॉच करेंगे मींस बात करेंगे, वॉच कहते ना भगवान वॉच मींस भगवान के महावाक्य, तो बात करेंगे। बोलने के लिए मुख तो जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। बोलने वाले को मुख चाहिए और सुनने वालों को मुख भी चाहिए कान भी चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राय या मत कहा जाता है। दूसरे फिर हैं रावण की मत पर, तुम हो ईश्वर की मत पर, मनुष्य किस पर है, रावण की मत पर है। ईश्वरीय मत और आश्रय मत, ईश्वरीय मत आधा कलप चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं, फिर सतयुग और त्रेता में वही ईश्वरीय मत चलती और कोई मत नहीं है, वही की वही मत चलती है। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है, वहाँ जन्म भी थोड़े हैं। क्यों थोड़े हैं? क्योंकि योगी लोग हैं और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत हैं क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते। जन्म कम, भोगी, आयु कम, संप्रदाय बहुत और दुखी भी हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते। पहले राम मत वाले होते, धीरे धीरे द्वापर से आए, फिर रावण मत से मिल जाते हैं। तो सारी दुनिया को, सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर के तुमको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना होती है। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है? जब ईश्वर की मत मिलती है तब स्वर्ग की स्थापना होती है। ईश्वर मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए, थोड़े टाइम नहीं, आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य हो जाता है, उसको कहा जाता है आश्रय मत। अब अपने आप से पूछो, हम आश्रय मत से क्या करते थे? जब आश्रय मत पर चलते क्या करते? भक्ति करते थे, लड़ते झगड़ते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। बाबा कहते पूछो आश्रय मत से क्या क्या किया हम। अब अपने आप से पूछो कि हम आश्रय मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से अब क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका ही नाम रखेंगे। जैसे कोई महान कार्य करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो उस स्थान का नाम उस व्यक्ति से हो जाता है। तो स्वर्ग की स्थापना की शिव बाबा ने, तो नाम क्या पड़ेगा? शिवालय पड़ेगा ना, तो उसका ही नाम रखेंगे। तो वह है शिवालय जहाँ देवताएं रहती हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बात समझा रहे हैं। क्या रचते हैं ये भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, सब लोग पुकारते हैं, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले, अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब तुम इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़ी समझते। इतना दुख है, अशांति है, वो समझते बहुत साइंस ने एडवांस हो गई है, बहुत सुख है, लेकिन वो समझते नहीं कि इतना दुख है। तो बाबा कहते कई तो ऐसे हैं जिसको दुख भी नहीं समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह जड़ अगर चैतन्य होता तो बता देता, वो झाड़ तो जिससे जो पेड़ है वो जड़ है, अगर चैतन्य होते तो वो बोलते ना। तो बाबा कहते अगर वो चैतन्य होता तो बता देता, तुम चैतन्य झाड़ के हो इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई भी नहीं जानते। ऐसी नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता, बाबा ये राज को ऐसा ही नहीं, नया झाड़ इसी झाड़ की सैपलिंग लगाते इसको ही चेंज करते, तो ऐसे नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता है। ये भी बाप ने समझाया है, पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते, कोई नए वाले नहीं बुलाते, पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना को जानते, खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल क्या होता है आप ही बन जाते, कोई बाबा को बनाना नहीं पड़ता, बाबा आकर के हेवन बनाते हैं, हेवन के बाद हेल हो जाता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, सतयुग में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए, किस चीज का वर्षा, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का। तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में दुख तो होता ही नहीं है। तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते देखो नाम भी कितना अच्छा है, नाम कौन सा, एक है संगम युग, बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग, नाम भी कितना अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते, सत्युग त्रेता के बीच में संगम है लेकिन उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम किसको कहते, कलयुग और सत्युग के बीच का। तो बाबा कहते हैं और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, बाप को बुलाते भी हैं और समर्पण भी करते हैं, बुद्धि को समर्पण कहेंगे, कुछ कुछ लगाएंगे, बुलाते रहते हैं, तो बाबा के तो समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड करो, लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़ेगा। बाबा कहते अगर मुझे लिबरेट करना है तो मैं आऊंगा, तब तो कर सकता हूँ ना, लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन के ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो क्या होता है, अब पूरे 5000 वर्ष के बाद बच्चे बाबा से मिले हैं, बाबा को बच्चों को देख के खुशी होती है और बच्चों को भी बाबा को देख के खुशी होती है। तो बाबा कहते बाबा बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बहुत खुशी होते हैं। वह है हद का बाप, लौकिक में भी ऐसा होता है कि बाप अपने बच्चों को बहुत समय के बाद देखता, बच्चा विदेश गया बहुत वर्षों के बाद आता है, तो फिर जब आता है तो कितनी खुशी होती, चाहे फोन पे बात करते रहे लेकिन जब आता है तो खुशी होती है ना। तो बाबा कहते वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 और किसको 12 बच्चे होते, पहले जमाने में था और आजकल तो इतना नहीं। तो बाबा कहते उस समय तो ऐसे चलता था ना, और तो बाप क्रिएट करता फिर पालना भी करेगा, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो काग विष्टा के समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, ऐसे तमो प्रधान बन जाते, लेकिन इतना सुख नहीं। काग विष्टा के टाइम समय अनुसार थोड़ा सा सुख मिलता है, तमो प्रधान से सुख बहुत थोड़ा है। परंतु तुम जब सत्व प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सत्व प्रधान बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे वो कर सकता। वो क्या समझते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, इस चीज को इधर से उधर कर सकता है। फिर कई तो ऐसे भी समझदार को हो या दुनिया के बुद्धू को हो कहेंगे जो मक्खी मर गई उसको जिंदा करे। बाबा कहते हैं ये क्या, ये भगवान का काम है क्या? तो बाबा कहते हैं वो तो ऐसे समझते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा कि अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ऐसे भी ये लोग होते थे, क्रिटिसाइज करते थे, बताते थे ना कि बाबा है भगवान है। तो किसी ऐसे ने जो है समझते तो कुछ नहीं है, तो बाबा को चिट्ठी लिख दिया कि लिख के भेज दिया, किसी बच्चे को दिया होगा बाबा के पास पहुंचा देना। तो क्या लिखा, अगर आप भगवान है तो मक्खी को जिंदा कर दो। अरे लोग मक्खी को जिंदा करके क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान है तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ, चैलेंज। तो बाप सोचिए ऐसी चैलेंज अगर कोई भगवान को करेगा तो उसकी हालत क्या होगी, कितना उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं, बहुत प्रश्न पूछते थे उस समय, आजकल तो नहीं पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो, जिन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख मिल नहीं सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं, राम की जेल में नहीं गए। राम की तो जेल होती नहीं है, है ही रावण की जेल। तो बाबा कहते राम की तो जेल ही नहीं होती, रावण की जेल, राम की जेल नहीं कहेंगे। राम आते ही हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, फिर उनको 20 भुजाएं दिखानी चाहिए। भुजाएं तो दो ही दिखाते हैं, लेकिन है 10 शीश वाला। तो बाबा कहते 20 भुजाएं दिखानी चाहिए। बाप ने समझाया है 5 विकार पुरुष से, फिर 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य, या 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया। दुनिया में क्या है, जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है उसको कहते हैं इनके पास बहुत माया। बाबा कहते हैं धन संपत्ति माया नहीं है, वो तो संपत्ति है आपकी, यूज करो। माया विकारों को कहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती, कितनी संपत्ति मिलती है। सच्ची में तो मिलेगी ही, लेकिन संगम पर भी बाबा कितने देते हैं। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? पढ़ाई में स्टूडेंट बच्चे टीचर को कहे मेरे को बस नंबर दे दो, ऐसे दे दो, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं। तो बाबा कहते पढ़ाई में कोई मांगना होता है क्या? पढ़ाई में कोई मांगना होता है? इसमें तो मांगने की कोई बात ही नहीं है। टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें पवित्रता भी चाहिए। अब इस उस पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में पवित्रता भी चाहिए, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्म पदम, बाबा कहते देखो बाबा कई टाइटल देते, पद्मा परम भाग्यशाली बोलते ना, पद्मा परम एक एक अक्षर के, बाबा के महावाक्य के एक एक अक्षर की वैल्यू तो बहुत है। इसमें एक एक अक्षर की वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा परम, बाप को पहचानो, बाप को याद करो। बाप ने पहचान दी है कि जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदु हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, बाबा के टाइम पर एक फिल्म बनी थी, बाहर वालों ने बनाई थी, जिसका नाम था कर्ण कर्ण में भगवान। बाबा ने कहा देखो ये क्या है। फिर बाबा ने एक दो बच्चों को कहा था जाकर के देखो तो सही। बाबा वैसे फिल्म के लिए मना करते, लेकिन बाबा ने कहा अच्छा जाकर के देखो, लेकिन कैसे जाके देखना, साक्षी होकर के देखना, ऐसा नहीं कि उससे प्रभावित हो जाए। तो बाबा ने कहा नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। किसी ने आके बाबा को बताया था बाबा ऐसी फिल्म बनी है, किसी ने देखा भी होगा। तो फिर बाबा ने एक दो को कहा जाओ जाकर के देखो। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते तुम भल कहां भी जाओ, ऐसे कच्चों को नहीं भेजेंगे, जाए और जो फिल्म देख करके इतने प्रभावित हो जाए और ऐसी बुद्धि हो जाए जो बार बार फिल्म देखने की आदत पड़ जाए। बाबा उन महावीर को कहते थे कि किस दृष्टि से जाते हैं, देखते हैं या उसमें क्या सेवा हो सकती है, ऐसा नहीं कि उसमें प्रभावित हो जाए। तो बाबा कहते हैं जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते तुम भल कहां भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो, ये है बेहज की बात। वह कहानियां हज की बना दी हैं, तुम हो शिव शक्ति सेना। बाबा ने टाइटल दिया है तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। शिव से शक्ति लेने वाले तुम शिव की सेना हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? अब बाबा कहते उन्होंने तो रख दिया शिव सेना, वो सेना क्या क्या करती है आपको पता है, लेकिन तुम सेना क्या करते हो? तुम तो पीस स्थापन करते हो, बाबा से शक्ति लेते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। फिर बाबा कहते तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा नाम तो रखा ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते। ज्ञान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, आधा कल्प सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति, उन्हों की है बाहुबल की साइंस की शक्ति। बाबा कहते तुम्हारी है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, चाहते भी हैं कि भारत का प्राचीन योग सीखे जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, कहते ना क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह कैसे बना? बाबा कहते योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हरि को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना बड़ा पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, इसको कुदरत कहेंगे। बाप तो है ही, बाबा कहते हैं इसको कुदरत कहेंगे, बाप तो एवर सर्वशक्तिवान गोल्डन एज है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्य से तेजोमय, जैसे बाहर वाले कहते ना, भगवान के लिए कहते, ईश्वर के लिए कहते कि हजारों सूर्य से तेजोमय है, बाबा कहते ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजोमय है, वह तो जिसको जो भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय जब मैंने साक्षात्कार में जाती थी, क्योंकि वही भावना थी, वही ज्ञान भक्ति का सुना हुआ था, वो बहुत लाइट देखती थी, कि बहुत तेज देखती थी, कहते बस करो बस करो, ऐसे वो बोलती थी बस करो बस करो। लेकिन पहले तो क्या था कि बाबा के टाइम पर तो ये हुआ, लेकिन भक्ति में तो कहते ना हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो बाबा कहते हैं वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती थी, वो जब ध्यान में जाती थी आंखें लाल लाल हो जाती थी, फिर कहती थी बस करो बस करो, ये वो इस प्रकार से करते थे, आंखें लाल लाल हो जाती थी, बस करो हम सहन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, भक्ति मार्ग में यही संस्कार रहे ना, फिर ज्ञान में आने से शुरू शुरू में वो भक्ति मार्ग के संस्कार चले। तो बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग के संस्कार, ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं हमको, कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है हियर नो इविल सी नो इविल, मनुष्यों को पता ही नहीं है ये किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, महात्मा गांधी के तीन बंदर दिखाते थे, और तीन बंदरों का क्या लिखा, हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल। बाबा ने क्या किया, बाबा ने उस समय नलनी बच्ची, बाबा बॉम्बे से आई थी नलनी बच्ची को बाबा ने उसका किया, तो बाबा ने पांच बातें करवाई, हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल थिंक नो इविल डू नो इविल, भी ऐसा इविल काम भी नहीं करो। बाबा कहते हैं बाबा ने समझाया हियर नो इविल, मनुष्यों को पता नहीं ये किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का भी बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था, नलनी बच्ची का वो चित्र भी आप कईयों ने देखा हुआ है, पिछली बार कुछ समय पहले नलनी बहन आई तो वो चित्र सबको दिया था, एक छोटा पोस्ट कार्ड स्टाइल था उसमें बना करके सबको दिया भी था, तो उसमें पांच बातें हैं, हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल थिंक नो इविल डू नो इविल। तो बाबा कहते हैं बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है, बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं, बिल्कुल धीरे 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 नीचे उतरते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में दो कला कम होती हैं, चंद्रमा का मिसाल है ना, चंद्रमा का भी धीरे धीरे उसकी कम होता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं, तो 16 कला होता है, वह है अल्प काल की बात। ये तो है बेहज की बात, ये है बेहज की बात, चंद्रमा के ऊपर जो कलाएं उतरती हैं चढ़ती हैं, बाबा कहते हैं अल्प काल की बात है, लेकिन बाबा तो बेहज की बात बताते हैं, ये है बेहज की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है, ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीचे है राहु की दशा, दुनिया वाले भी तो दशाएं देखते रहते ना, तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों पर भी ऐसे होता है, कभी राहु की दशा है कभी देखो बृहस्पति की दशा है, लेकिन पूरे कल्प के अंदर बृहस्पति की दशा सत्युग त्रेता में और राहु की दशा द्वापर से शुरू होती है, कलयुग तक चलती है। नीचे में नीचे है राहु की दशा, एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, ये बेहद के बाप को, वह तो बेहद के बाप को जानते ही नहीं है कि अब तो राहु की दशा सब पर बरोबर, सारे विश्व के ऊपर क्या है, राहु की दशा है। ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते, राहु की दशा ही इनसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सचयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गीत गाते रहते ना भक्ति में कि मुझ निर्गुण में कोई गुण नहीं है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते हैं जिसकी महिमा गाते हैं, अपवित्र राज्य वाले गाते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण ना, ये भक्ति में गाते रहते हैं और सब उसको फॉलो करते गाते रहते हैं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था। बाबा कहते अरे ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है। अब सारी दुनिया का नाम क्या हो गया, सारी दुनिया निर्गुण है क्योंकि कोई गुण नहीं, ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी है। बच्चों को हमेशा महात्मा कहा जाता है, फिर तुम कहते हो कोई गुण नहीं है, ये तो सारी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते तुम ऐसे क्या कहते हो, बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं है, ये तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, जब ग्रहण लगते ना, आजकल तो ऐसा नहीं है, पहले जमाने में होता था जब ग्रहण लगता था और ग्रहण पूरा होता था तो कितने भिखारी आ जाते थे, दे ग्रहण तो छूट, दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे, उस समय देते भी थे उनको, और आजकल तो इस प्रकार से नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम सबको अब वापिस जाना है, पवित्र न होने के कारण वापिस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते, वो पवित्र नहीं है, पवित्र कैसे बनना है, बाप युक्ति बताते। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, है कोई ऐसा जो बाबा को कहे बाबा हम भूल जाते हैं, बहुत सारे आते हैं हमको बाबा भूल जाता है, बुद्धि योग नहीं लगता, याद नहीं, योग नहीं लगता, बार बार कहेंगे योग नहीं लगता, अरे योग नहीं लगता इसको क्यों बोलते हैं। बाबा कहते याद कहो, फिर उस समय बाबा के सामने किसी ने कहा होगा तो बाबा कहते हैं कई कहते बाबा हम भूल जाते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चे पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे, विचार करो ये क्या कहते हो। बाबा उनको कहते सोचो विचार करो तुम क्या भूल रहे हो, जो बाप पावन बना रहे उसको भूल जाते हो, फिर पावन कैसे बनेंगे, विचार करो कि ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे, जानवर को कहीं दूर कहीं छोड़ के आ जाओ, दौड़ दौड़ करके फिर वापिस अपने घर पहुंच जाते, कहीं से भी आ जाता है, फिर अपने बाप माँ से मिल करके उनको पहचान लेता है, दूसरे को नहीं अपने माँ बाप को आराम से पहचान लेता है। तो बाबा कहते देखो जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं, तुम क्या कहते हो? बाबा कहते सोचो तो सही है क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारा बेहज का बाप हूँ, तुम आए हो बेहज के बाप से बेहज का वर्षा लेने, आए हो वर्षा लेने। और बाबा को कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाएंगे, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है, ये है बाप दादा। अभी आपको पता है ना कि जब बाबा आते थे तो क्या बोलते थे, बाप दादा। बाबा भी बाप दादा कहते क्योंकि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है, तो बाप और दादा है, तो बाबा कहते ये है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस ब्रिकुटी के बीच में, ब्रह्मा की आत्मा भी बैठी है, शिव बाबा की आत्मा भी है, तो दोनों साथ साथ। लेके आत्मा कितना स्थान लेती, बिल्कुल थोड़ा सा पता भी नहीं पड़ता कि दो आत्माएं बैठी हैं। इन दोनों की आत्मा इस ब्रिकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दो आत्माएं होंगी, बाप दादा एक नहीं है। बाप दादा कहते तो बाबा कहते जरूर दो आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो कि हम भाई भाई हैं। फिर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, ये याद पक्की होनी चाहिए। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण हम भाई भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं ये याद पक्की होनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं भाई बहन में भी नाम रूप की कशिश होती है, बहुतों को विकल्प आते हैं। अच्छा शरीर देखते हैं तो विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा ने इतनी अच्छी युक्ति बता दी है कि पुरुषार्थ ज्यादा भी ना करना पड़े, लेकिन आत्मा रूप में भाई भाई देखो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप भी जरूर होगा। जब कहते भाई बहन है तो भी बाप है, जब कहेंगे ब्रदर्स हैं तो जरूर उनका कोई बाप भी होगा। ब्रदर्स हैं तो बाप भी जरूर चाहिए, सबका बाप एक है, सभी बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश रहेगी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा देखो जितना याद करेंगे उतना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार खुशी रहेगी, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही कट निकलेगी। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। बाबा से वो प्यार की कशिश होगी, बाबा से वो प्यार भी मिलेगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना। देखो कितनी अच्छी बात, बाबा कभी कहते शक्तिवान बनाओ, आज बाबा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ समय भी पहले बाबा क्या कहा था, मांगने से मरना भला। बाबा कहते कुछ भी नहीं मांगो, बाबा ये हमारा काम कर दो। तो बाबा कहते कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्म पदम पति बनना है। दूसरा राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। आज का वरदान, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप कहना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप से सदा साथ रखना। कौन सा? निर्माण ही महान है। जितना निर्माण बनेंगे उतनी महानता आती है। तो बाबा कहते हैं महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदान से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करती हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहें, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। और आज का अव्यक्त इशारा, आज की तारीख है 27 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते। जिसके अंदर के संस्कार सरल होंगे तो बाहर भी आएंगे। तो बाबा कहते हैं किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूँ वही, वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव होगे। कौन कौन सी बातें? बाबा कहते जैसे बाप दादा वैसे हूँ बहु, वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा ये तो वही लगते हैं। कई बार आते हैं ना तो देखते ये तो वैसे ही लगते हैं। तो बाबा को कहते जब ऐसे बनेंगे तो दूसरे देखेंगे कहेंगे तो बाबा के समान लगते हैं। तो सभी को वैसा ही स्वरूप देखने में लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है, ओम शांति भवन के बाहर रोड पर सुजुकी कंपनी की चाबी मिली है जिसमें रिमोट भी लगा है। जिस किसी की हो तो स्टेज के पीछे से प्राप्त कर सकते हैं। इतना योगी मत बनो कि जो सब कुछ भूल जाओ और फिर शरीर रूपी गाड़ी को भी चलाना, लेकिन जो गाड़ी लाए हो उसको भी तो चलाना है ना, नहीं तो सेवा में लगा देंगे। सेवा में तो नहीं, आपको ही सेवा में लगाना। जिसकी गाड़ी है उसकी चाबी अब स्टेज के पीछे आकर ले लें। किसकी है गाड़ी की चाबी? है कोई बैठा नीचे ही होगा। ओम शांति।